मोती के आप जैसे प्रसाद के सूक्ष्म और अमूर्त बिंब विधान के दो एक उदाहरण यहाँ देना समीचीन होगा। यहाँ आप या चमक अर्थ की गतिमयता से उत्पन्न होती है। मन प्रेम और उसके आकर्षण की मादकता का पहला अनुभव कर रहे हैं। स्मरणीय है कि क्या मानवीय सृष्टि का प्रथम प्रणयानुभव है, क्योंकि देव सृष्टि में स्थूल भोग विलास था। काम का अनंग रूप और सूक्ष्म प्रणय स्तर मानवीय सृष्टि में ही विकसित होता है। तो इस प्रथम प्रणयानुभव की मादकता और बेचैनी काम स्वर्ग में मन के स्वगत में व्यक्त होती है। हय स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को और सुलाता है। पहले प्रणय स्पर्श का सूक्ष्म अनुभव वैसे ही सूक्ष्म बिंब विधान में विकसित हुआ है। मलय अपने में अमूर्त तत्व है, उसे और सूक्ष्म तथा अमूर्त बनाने के लिए कवि झिलमिल का प्रयोग करता है। फिर एक सामान्य सा अव्यय सा उस झिलमिल की प्रकृति को और अनिर्दिष्ट बना देता है। एक एक शब्द व्याकरणिक और काव्य रचनात्मक दृष्टि से सावधानी के साथ प्रयुक्त हुआ है। सा का प्रयोग जिसका अच्छा उदाहरण है। भाषा को लेकर अन्यत्र मिलने वाली शिथिलता यहाँ बिल्कुल अनुपस्थित है। अनावश्यक तराश नहीं तो लापरवाही भी नहीं है, और इस संतुलन में मलय के झिलमिल की बिंब प्रक्रिया पहले मानवीय प्रणय के सूक्ष्म और जटिल अनुभूति को कला के स्तर पर वैसे ही अस्पष्ट रूप में व्यंजित करती है जैसी अष्टप अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट वह मन के लिए रही होगी। यह जीवन और अनुभव की कला के रूप में पुनर्रचना है। मनोविकारों का रूप अपने में सूक्ष्म है, फिर आदिम मानव के क्रमशः जटिल होते हुए मनोविकारों की पकड़ और कठिन है। पर प्रसाद की कामायनी में तो यह सारी प्रक्रिया प्रधान वस्तु का अंग है, और कवि ऐसे कठिन अंकनों में कहीं झिझका नहीं। इन अस्पष्ट और सूक्ष्म अनुभवों का वह गहरा साक्षात्कार संभव करता है। मन के सच्चे प्रणय निवेदन को सुनकर और यह समझकर कि मन पहली बार श्रद्धा को विश्व रानी सुंदरी नारी के रूप में पहचान रहे हैं, श्रद्धा के मन में प्रणय के प्रतिदान और उससे उत्पन्न ब्रीड़ा और अनिश्चय का जो प्रथम अनुभव होता है, उसका सूक्ष्म कलात्मक अंकन कवि इस प्रकार करता है। धूम लतिका सी गगन तर पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशीर्थ में जो ओस भार नवीन, झुक चली सब ब्रीड़ वह सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार। पुरुष और नारी के लिए वृक्ष और लता का बिंब पुराना है, पर इस अति परिचित बिंब के भीतर आकाश के वृक्ष और शिशिर की रात में ओस के भार से दबती किंतु ऊपर उठने का यत्न करती धुएं की लता का रूप पुरुष तथा नारी के नए और सुकुमार संबंधों को एक नए अनुभव स्तर पर विकसित करता है, जिसे प्राचीनों ने भाव सबलता या मिलते जुलते शब्दों से अभिहित किया है। उससे व्यापक तर अनुभव संश्लेष की अभिव्यक्ति के लिए बिंब में बिंब के ऐसे प्रयोग बड़े दक्ष और सार्थक सिद्ध होते हैं। तरह तरह के जटिल बिंब विधान पर प्रसाद का असाधारण अधिकार है। एक का उल्लेख अभी हुआ है। यहाँ एक प्रचलित स्थूल बिंब के भीतर एक अन्य सूक्ष्म बिंब को विकसित किया गया है। ऐसे भी स्थल हैं जहाँ कवि ने दो सूक्ष्म बिंबों को एक दूसरे पर संयुक्त और आरोपित करके व्याकरण की संयुक्त क्रियाओं की तरह अनुभव को व्यक्त करना चाहा है। आंसू में ऐसे प्रयोग प्रायः आते हैं। कामायनी में भी अनेक उदाहरण हैं। देव सृष्टि के विनाश पर श्रद्धा सर के आरंभ में मन को सारा जीवन अर्थहीन और निस्सार लगता है। इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने एक पूरी बिंब माला में की है। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में लीन गगन के आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा साराज। बिंब माला फिर आगे बढ़ती है तथा उसमें विस्मृति का स्तूप और कई अन्य बिंब विकसित होते हैं। उद्धृत पंक्तियों में शून्यता का उजड़ा सा राज आरोपित बिंब प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है। शून्य अपने में ही जीवन की निस्सारता को व्यक्त करने के लिए प्रचलित प्रतीक या बिंब जिस भी रूप में प्रयुक्त किया जाए है, उसे और सूक्ष्म बनाने के लिए शून्यता का प्रयोग किया गया। फिर उजड़ा राज भी विनाश और निस्सारता का द्योतक है। यहाँ शून्यता के बिंब पर उमड़ा राज के बिंब को आरोपित करके अनुभव को अधिक सूक्ष्म धरातल पर उतारा गया है। उजड़ा सा में सा उजड़ने के भाव को कम न करके और फैला देता है। इस प्रक्रिया में कवि ने बिंब को सूक्ष्म करके उसे अधिक संश्लिष्ट बनाया है। यदि सूक्ष्म और फलतः संश्लिष्ट न बनना तो अकेले अपने अकेले रूप में शून्य एक प्रतीक रह जाता है। बिंब पर बिंब को आरोपित करना प्रसाद के रचना विधान का एक प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं प्रतीक और बिंब को परस्पर संपृक्त भाव से विकसित किया गया है। प्रतीक एक सूक्ष्म तत्व को विकसित करने के लिए अपेक्षा एक स्थूल विधान है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरा विभ्रम या पाप का प्रतीक है, कमल स्निग्धता और मंगल का प्रतीक है। कालांतर में प्रतीक बहुप्रचलित और स्वीकृत हो जाते हैं, जैसे कि उपर्युक्त प्रतीक हो गए हैं। फिर कविता के विकास क्रम में नए प्रतीक बनते हैं और क्रमशः स्वीकृत होते हैं। दूसरी ओर बिंब का निर्माण कई तत्वों से होता है और एक तत्व पूर्व परिचित रहने पर भी इनका परस्पर संबंध और संपर्क हर बिंब में नए रूप में परिकल्पित और विकसित होता है। इन उपकरणों का आपसी रिश्ता और उनकी टकराहट बिंब को कभी स्थिर और जड़ न होने देकर बराबर अर्थ को विकसनशील बनाए रखती है। इस दृश्य से हर बिंब की संश्लिष्ट रचना प्रक्रिया अपने में अलग और स्वायत्त है। प्रसाद की काव्य भाषा में प्रतीकों के माध्यम से बिंब को विकसित करने की सूक्ष्म और सुकुमार प्रक्रिया देखी जा सकती है। ईड़ा सर्ग का प्रसिद्ध गीत है जीवन निशीथ के अंधकार। यहाँ अंधकार मन के अपने ही मन के विभ्रम का प्रतीक है। इस अंधकार के समूचे अनुभव को और अधिक सूक्ष्म तथा जटिल स्तर पर प्रेषणीय बनाने के लिए कवि एक बिंब माला की रचना करता है। इन बिंबों में कच्ची इच्छाइयों के जलने का धुआं है, यवन मधुवन की कालिंदी है, मायाविनी युति के नेत्रों का अंजन है और अतीत के धुंधले चित्रों का संकलन है। इस पूरे छंद में एक प्रतीक तथा उसके लिए प्रयुक्त कई बिंबों का परस्पर गठन इतना संश्लिष्ट है कि अर्थ की प्रक्रिया बड़ी सघन और भारी यद्यपि निर्मल लगती है। रचना में अर्थ कैसे अशेष रूप में रहता है और कभी कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, यह प्रसाद और उनकी कामायनी के रचना विधान में और बिंब गठन में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बिंब और बिंब तथा प्रतीक और बिंब के विविध संगठन प्रसाद की सुकुमार और संवेदनशील कला को प्रमाणित करते हैं। बिंब रचना का यह रूप चमत्कारप्रियता या रूपवाद से प्रेरित नहीं है, जैसा पहले दिखाया गया पृष्ठ 42। प्रसाद अनुभूति को अतिशय महत्व देने वालों में है। बिंबों के उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता होने के बावजूद इसीलिए प्रसाद बिंबवादी नहीं कहे जा सकते। उनकी मूल दृष्टि हर सच्चे रचनाकार की तरह यही है कि मानवीय अनुभव के सूक्ष्म जटिल और संश्लिष्ट रूपों को कैसे कला के स्तर पर विश्वसनीय ढंग से अंकित किया जाए। उसके बिंब प्रयोग मानवीय अनुभव तथा उसकी अर्थवत्ता को विकसित और प्रशस्त होने देते हैं। इस अर्थ की प्रतीत गहरे स्तरों तक करा सकना जीवन और बिंब प्रक्रिया को परस्पर जोड़ता है और कुशल कवि के रचना विधान में दोनों प्रक्रियाएं संश्लिष्ट हो जाती हैं। और तब रचना में अर्थ उसी प्रकार गतिमान रहता है जैसे कि स्वयं जीवन में। इसी संदर्भ में मुक्तिबोध ने अपने पुनर्विचार की भूमिका में कहा है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। यह पुनर्रचना कैसे संभव हुई है, यह समझना और समझाना ही समीक्षक का मुख्य दायित्व है। यह पहले ही संकेत किया गया कि कामायनी की रचना दृष्टि मानवीय संस्कृत के संचरण विशेषतः भारतीय संदर्भ में तथा उसके समकालीन संकट पर विचार को लेकर विकसित होती है। मन आरंभ से ही जीवन की अर्थवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उनके श्रद्धा तथा ईड़ा के संबंधों के बीच जीवन के अर्थ की तलाश जारी रहती है। इस तलाश के दौरान रचनाकार की उत्पत्ति है कि देव सृष्टि की तुलना में मानवीय सृष्टि नश्वर और फलतः सृजनात्मक होने के कारण अधिक सार्थक है। जीवन दृष्टि की यह सार्थकता भाषिक स्तर पर भी अर्थ के गहरे और सूक्ष्म विकास से जुड़ी हुई है और इस तरह अपने श्रेष्ठ तथा बिंब परक अंशों में कामायनी अनुभव और भाषा के अद्वैत को प्रमाणित करती है। दोनों के अभेद पर कलात्मक तनाव से उत्पन्न द्वंद्व समूची रचना को गतिशील बनाता है, उन अंशों को भी जो अपनी सामान्य वर्णन भाषा में शिथिल हैं। मानवीय सृष्टि का वैशिष्ट्य उसकी सृजनात्मक क्षमता है और कामायनी स्वयं इस सृजनात्मक क्षमता का श्रेष्ठ उदाहरण है। बिंब विधान और रचना प्रक्रिया को मानवीय रूप देव सृष्टि के लिए निश्चय ही स्पृहणीय होगा। मानवीय सृष्टि और संस्कृत का आख्यान कवि ने इस रूप में किया है कि वह स्थूल जीवनादर्शों से परिचालित देव सृष्टि की तुलना में सूक्ष्म स्तर पर गतिशील है। अमर देव सृष्टि भोग विलास और सुख केवल सुख की संस्कृत थी। मनुष्य की संस्कृत मरणशीलता से बंध कर भी प्रेम और सृजन के सूक्ष्म आधारों पर विकसित होती है। नई मानवता के इस स्वरूप की व्याख्या कामायनी के संपूर्ण विधान में अनुस्यूत है। मन की संकीर्ण स्वार्थी प्रवृत्ति से चिंतित और परेशान होकर श्रद्धा कर्म स्वर्ग में पूछती है, मन क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता। नव मानवता के रूप की चिंता श्रद्धा और ईड़ा को भी अपने अपने ढंग से है। मन को साथ लेकर इन तीनों की टकराहट में समन्वय में नहीं, रचनाकार की दृष्टि क्रमशः विकसित होती है। इस संदर्भ में मन के श्रद्धा और ईड़ा से हुए कई विवाद कर्म ईर्ष्या और संघर्ष स्वर्गों में महत्वपूर्ण हैं। ईर्ष्या स्वर्ग में वे श्रद्धा से स्पष्ट कहते हैं, श्रद्धे यह नव संकल्प नहीं चलने का लघु जीवन अमोल, मैं उसको निश्चय भोग चलूं जो सुख चल दल सा रहा डोल। देव संस्कारों के अवशेष रूप में मन के मन में भोगवादी प्रवृत्ति ही प्रबल है। भावी जननी की आने वाली संतान के प्रति स्नेह कामना उन्हें सहे नहीं, क्योंकि सीमित एकाकी व्यक्तित्व को असीमित और विस्तृत बनाने वाले मनुष्य में नए विकसित हुए प्रेम के सूक्ष्म तत्व से वे अपरिचित हैं। क्षणिक सुख भोग सुखों को भोग चलूं, यह उनकी मुख्य दृष्टि है। स्वभावतः श्रद्धा द्वारा प्रस्तावित मानवता का नव संकल्प उन्हें स्वीकार्य नहीं। पुनरुत्थानवादी रिवाइवलिस्ट मनोवृत्ति के होने के कारण वे नई सृष्टि में भी पुरानी देव संस्कृत के रूप को ही पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। नव मानवता के नव संकल्प से उनका सहज विरोध है। श्रद्धा से वे कहते हैं, स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विफल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। पर श्रद्धा अपने को अप्सरी नहीं मानवी के रूप में देखती है और स्वर्ग की परंपरित महत्ता को तिरस्कार करके धरती पर आत्मशक्ति को विकसित करती है। वह अतीत से अपने को बांधती नहीं वरन भविष्य के सारे खतरों के साथ उसकी ओर उन्मुख होती है। मन के साथ अपने विवादों में श्रद्धा नव मानवता के रूप की कई संदर्भों में व्याख्या करती है। स्वार्थ पर विजय पाकर प्रेम तत्व को विकसित करना यह एकांत स्वार्थ भीषण है, वह कहती है, और रचनाशील होकर मरण धर्मी शरीर की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाना उसके नव संकल्प की प्रधान उत्पत्तियां हैं। आदिम प्रवृत्ति से आक्रांत मन को वह सविनय समझती है, समझाती है, रचना मूलक सृष्टि यज्ञ पुरुष का जो है, संस्कृत सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है। मानवीय संस्कृत में यह रचना का आधार है जो जैविक सृष्टि के स्थूल स्तर से आरंभ होकर श्रद्धा सृष्टि की पहली माँ है। साहित्य दर्शन और विज्ञान के सूक्ष्म स्तरों तक परिव्याप्त है। देव सृष्टि में अकल्प श्रद्धा का प्रणय भाव और उसका जननी रूप भावात्मक स्तर पर भी संबद्ध है। मानवीय सृष्टि के आरंभिक प्रणय का उल्लेख इसी प्रसंग को लेकर ईर्ष्या सर्ग में होता है। श्रद्धा का प्रणय और उसकी आरंभिक सिद्धि अभिव्यक्ति। देव सृष्टि में विलास वितान तना था, यह उनका सहचर काम बताता है। प्रणय भाव तो मानवीय सृष्टि में ही काम के अनंग होने के साथ विकसित हुआ है और श्रद्धा के माध्यम से प्रणय किया। आज 20वीं सदी में हम मनुष्य के पूरे मानसिक विकास और संश्लेष से परिचित हैं, पर कामानी तो इस क्रमिक विकास और संश्लेष का ही आख्यान है। अतः प्रसाद को यह सावधानी भी बरतनी थी कि उन्हें विकसित भाषा से अविकसित मन की बात कहना है। उत्तरोत्तर जटिल और संश्लिष्ट होते मनुष्य के मन और व्यक्तित्व का गतिशील अंकन तभी संभव था जबकि भाषा का रचना आधार उतना ही तनावपूर्ण और द्वंद्वात्मक हो। कवि ने इसीलिए बिंबों में सूक्ष्म अनुभव को संप्रेषित किया है जो अर्थ की सुकुमारता को क्षत किए बिना उसके वीक्षणशीलता को अक्षुण रखने के सबसे दक्ष साधन है। इसके लिए आधुनिक कवि शब्द प्रयोगों में एक ही शब्द की परस्पर मिलती जुलती छायाओं का द्वंद्व परिचालित करता है। संस्कृत और मध्यकालीन हिंदी काव्य में श्लेष के सहारे एक शब्द के कई कई अर्थ संभव किए जाते थे। इस प्रक्रिया में बल अधिकतर चमत्कार और कौशल पर था, अर्थ को सघन और विकसनशील बनाने पर नहीं। चमत्कार की कसौटी यही थी कि कितने असंबद्ध अर्थ एक शब्द के सहारे जुटाए जाएं। यद्यप कुशल कवि लाक्षणिक अर्थों की भावात्मक अन्वित पर ही ध्यान देते थे। कहे कबीर गुरदिया पलिता सो झल बिरलय देखी, यहाँ झल में प्रकाश और आध्यात्मिक अनुभूति के अर्थ परस्पर संबद्ध हैं। इसलिए यहाँ चमत्कार प्रधान नहीं वरन अर्थ को प्रशस्त करने का गहरा उपक्रम है। सहज श्रेष्ठ प्रयोगों के सहारे रत्नाकर ने उद्धव शतक में अपना प्रसिद्ध सांग रूपक बांधा है। रस के प्रयोगन के सुखद सुजोगन के जेते उपचार चारु मंज सुखदाई हैं। इस कवित्त में गोपियों का कठोर विरह और विषम ज्वर तुलनीय हैं और शीर्ष शब्द समान संगत और उपयुक्तता के साथ दोनों सदृश संदर्भों में अर्थ ध्वनित करते हैं। कहीं भी दूरारूढ़ अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। इस दृश्य से आधुनिक काल के आरंभ में रचित यह श्लेष युक्त लंबा सांग रूपक रीत काल की अपनी कला को भी समृद्धतर बनाता है, पर श्लेष के दोनों पक्षों में समा कर अर्थ समाप्त हो जाता है। आधुनिक रचनाकार के बिंब प्रयोग श्लेष के भिन्न अर्थों को न लेकर एक ही शब्द की कई मिलती जुलती अर्थ छायाओं में हल्का तनाव उत्पन्न करते हैं और इस तरह अर्थ को सूक्ष्म स्तर पर गतिशील रखते हैं। श्रद्धा की मुस्कान के अंकन के लिए किसलय पर अलसाई किरण का बिंब पहले चर्चित हुआ है। यहाँ अलसाई शब्द में थकान का जितना आलस है उतना ही सौंदर्य और मद का आलस है और साथ ही अलसाने की संक्षिप्त अवधि भी व्यंजित होती है। इसी तरह अलसाने में जितनी थकान की व्यंजना है उतनी ही ताजगी भी। एक सामान्य नामधात की इन विविध संबद्ध छायाओं के परस्पर तनाव को वैसा ही सूक्ष्म और सुकुमार प्रभाव निर्मित होता है जैसा श्रद्धा के सौंदर्य अनुभव के लिए कवि रचना स्तर पर उचित मानता है। एक कुशल कवि के लिए कहने और न कहने के बीच सही अनुपात साध पाना कितना जरूरी है यह ऐसे ही संवेदनशील अंकनों में समझा जा सकता है। छायावाद के बाद नई कविता के कुछ समर्थ रचनाकारों ने तो बिंब विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत के द्वैत को भी छोड़कर साधारण से लगने वाले वर्णन को ही बिंब के रूप में ठाल दिया है। रघुवीर सहाय की अनेक कविताओं में वर्णन का रूप बिंब में परिणत हो जाता है। पर वह बिंब की अपनी विकास प्रक्रिया में आगे की बात है। कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य में अर्थ और अनुभव की अद्वैत प्रक्रिया का वे जोड़ उदाहरण है। उसके बिंबों की असाधारण रचना शक्ति में उसकी सामान्य वर्णन भाषा की शिथिलता विलुप्त हो जाती है। स्थूल वर्णन और सूक्ष्म अनुभव एक दूसरे के साथ कभी कभी अटपटे लगने पर भी परस्पर कुछ वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा कि कीड़ा संघर्ष सर्ग में बताती है। देश कल्पना काल परिधि में होती लय है। स्थूल वर्णन इसी तरह सूक्ष्म अनुभव में विलीन हो जाते हैं और फिर काल खोजता महाचेतना में निक्षय है। देश काल और महाचेतना के उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते स्तरों का एक साथ अनुभव कामायनी संभव करती है। काव्य की ऐसी अर्थ क्षमता की व्याख्या में अज्ञेय ने एक कविता लिखी है, मैं कवि हूँ दृष्टा उन्मेष्टा संधाता अर्थवाह मैं कृत व्यय मैं सच लिखता हूँ लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ। तू काव्य सदा वेष्टित यथार्थ चिरतनित भारहीन गुर अव्यय तू छलता है पर हर छल में तू और विशद अभ्रांत अनूठा होता जाता है। कवि और काव्य का यह रचना संबंध प्रसाद और कामायनी के बीच है।